हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 29। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं,
जन्म गुह्यम भगवतो यैतत् प्रायतो नरः सायं प्रातर गृणं भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातर गृणं भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्तया दुःखग्रामात् विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्तया दुःखग्रामात् विमोच्यते।
शब्दों का अर्थ, जन्म गुह्यं भगवतो। जन्म अर्थात जन्म, गुह्यं मतलब गुप्त या सीक्रेट, भगवतो यानी भगवान का। यह एतत् प्रयतो नरः, यह मन जो, एतत् यानी ये सब, प्रयतो यानी सावधानी से, नरः यानी मनुष्य, सायं प्रातः गृणन् भक्तया। सायं अर्थात शाम को, प्रातः मतलब प्रातः काल, गृणन् अर्थात पाठ करता है या वांछता है भक्तया, प्रेम से, भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक। दुख ग्रामात विमुच्यते, दुख ग्रामात यानी समस्त कष्टों से विमुच्यते अर्थात छूट जाता है। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, जो भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी से प्रत्येक सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव
इस जगत में भगवान के अवतार की गोहियता को भली भांति जान लेने पर भवबंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु करते हैं सामान्य नहीं होते, गोहीय होते हैं। जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भावबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को विमुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है। और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणरघुनाथं वितन्दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणरललिता श्रीविशाखान्वितश्च वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारो बिंबफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णांतरं किमपि तत्व अहं न जानि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव ये स्तवे वेति सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं समता ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। हम श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण अर्थात जितने भी अवतार अब तक भगवान के हुए हैं उनका उत्स उनका सोर्स उनका स्रोत अगर कोई है तो वो कौन है भगवान श्री कृष्ण। इसे हमने जो श्लोक कल पढ़ा उसमें इस चीज को सूत गोस्वामी जी ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं के बाकी सब जो भी है वो भगवान के अंश हैं भगवान की कलाएं हैं परंतु साक्षात भगवान यदि कोई है कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान यदि कोई है तो वो कृष्ण है। और आज अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं सुत गोस्वामी क्योंकि यह संसार जो है वो दुखों का सागर कहलाता है कि इस संसार में जो जीव जन्म लेता है अभी तक जीव गर्भ में आता है उसी समय उसके दुखों का शुभारंभ हो जाता है। अभी गर्भ में है और गर्भ के बाहर निकलने के बाद जन्म और जन्म लेने की पीड़ा इतनी अत्यंत कठिन होती है जन्म क्योंकि एक तो जब जीव गर्भ में होता है उस समय उसको इतना दुख सहना पड़ता है लेकिन क्योंकि जीव को याद नहीं रहता है परंतु वो इतना दुखी होता है। अब सोच के देखें एक जीव है वो गर्भ इतना छोटा होता है और उसमें मूवमेंट करने की भी जगह नहीं होती है उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है और वो जीव वहां पर घुट रहा होता है और बड़ी मुश्किल से वो समय बीत रहा होता है उसका, और भगवान से प्रार्थना करता है कि कृष्ण यहाँ से निकालो मुझे, मैं आपकी जरूर भक्ति करूंगा और इस कष्ट, ये इतनी कष्टमय जगह है कि मैं वापिस ऐसे कभी भी, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जटनी जठराशयनम, क्योंकि ये जननी के पेट के अंदर जो जठराग्नि है मुझे उसके अंदर लेटना पड़ना है, तो मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूंगा और कभी भी मैं वापस इस जगह पर नहीं आऊंगा। लेकिन क्योंकि जीव का स्वभाव है भूल जाता है, और संसार में आने के बाद वो भगवान से किया हुआ अपना वादा भूल जाता है और दोबारा से वही कार्य करता है जिसके कारण उसे तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन शास्त्र यहाँ बता रहे हैं कि दुख ग्रामात विमुच्यते, कि अगर आपको समस्त कष्टों से, और भौतिक कष्ट तीन तरह के होते हैं, जैसे कष्ट जिसे जीव सदैव पीड़ित होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तो इन समस्त जैसे आदि भौतिक कष्ट होते हैं जैसे अन्य जीवों से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी या कीड़े कुछ भी हो, उनसे जो जीव को कष्ट मिल रहा है वो आदि भौतिक है, या मनुष्य जैसे, या फिर अन्य मनुष्य है, जैसे कोई किसी के पड़ोसी किसी को तंग करते हैं, तो कोई है ना जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, वो जो होते हैं वो तंग करते हैं, और दुख तो हृदय में तब आता है क्योंकि आजकल जीव मनुष्य को पक्षी पशु ये इत्यादि ये सब तंग नहीं करते, और ना ही अन्य लोगों से ज्यादा, बल्कि और भी ज्यादा जो अपने रिलेटिव्स हैं, जैसे भाई भाई को तंग करता है, बहन भाई आपस में लड़ते हैं, और है ना घर वाले, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो एक दूसरे को इतना तंग कर रहे होते हैं, और ये यानी जीव से, किसी भी जीव से आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई अगर आपको परेशानी हो रही है, दुख मिल रहा है, तो वो होता है आदि भौतिक क्लेश। और आदि दैविक कौन सा होता है, जो देवताओं के द्वारा मिलता है, जैसे भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक होना, और या अति वर्षा हो जाना, या फिर सूखा पड़ जाना, ये सब जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट वो होते हैं जो स्वयं मनुष्य अपने आप को देता है, यानी चिंता करना, और चिंता करता है, परेशान होता है बहुत, और भविष्य की फिकर कर रहा होता है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, और पीछे जो हो चुका होता है, यानी जो वैसे वर्तमान में हमने कर लिया है दुख, उसका भी बार बार याद करके उसको याद कर रहा होता है। तो ये सारे दुख जो मिल रहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, और चार दूसरे कष्ट होते हैं, जन्म लेना, और जन्म लेने के बाद जीव जब पैदा हो जाता है फिर वो तकलीफ भूल जाता है जो उसने गर्भावस्था में या जन्म लेने के टाइम पर जो उसको तकलीफ मिली थी। उसके बाद वो मजा करता है यौवन तक, जैसे किशोरावस्था में भी उसको कोई है ना प्रॉब्लम नहीं होती है, और यौवन में भी मजे कर रहा होता है, लेकिन दुख तब होता है जब वो बीमार हो जाता है, है ना। कभी कोई जीव बीमार होता है तब उससे पूछो, उसे लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं क्योंकि बीमारी मुझसे नहीं सही जाती। अगर भगवान न करे किसी को कोई बड़ा रोग लग जाता है तो फिर वो जीना नहीं चाहता, और इसको बोलते हैं व्याधि और जरा, यानी कि बहुत ज्यादा जब बूढ़ा हो जाता है, तो बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है, और उसके बाद मृत्यु। मृत्यु के समय इतना दुख होता है, शास्त्र कहता है सैकड़ों बिच्छू जब एक साथ मिलकर किसी को डंक मारते हैं तो उस समय जितना कष्ट होता है उतना कष्ट हमें दिखता नहीं है, वो तड़पता हुआ, क्योंकि वो इतना खौफनाक होता है, हमें ना वो यमदूत नजर आ रहे होते हैं और ना ही उसकी मृत्यु, हमें तो ऐसा लगता है सोया था और पड़ा चला गया, लेकिन वो इतना चीख रही होती है वो जीव, जो कि उसमें से निकलता है जब शरीर के अंदर से शरीर के साथ इतना लगाव हो जाता है तो उस समय इतनी पीड़ा होती है। ये सारे क्लेश एक बार नहीं, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से जीव को भुगतने पड़ते हैं। तो आज सुत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि देखो भगवान की कितनी करुणा है, भगवान ने इतने सारे अवतार लिए, क्योंकि जीव का जन्म तो कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है, भगवान के जन्म और कर्म 4.9 में भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कार्य सब दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस तरह से जान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति, जब वो यह शरीर छोड़ता है तब दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। क्यों? मामेति सोर्जुन, क्योंकि वो मेरे पास आ जाता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त हो जाती। किसको? जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मान लेता है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो भगवान के जन्म और कर्म को सही तरह से जान लेता है, वो वापस नहीं आता। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो, कि भगवान के जो जन्म है वो बहुत बहुत गुह्य है, ये बहुत सीक्रेट है। भगवान कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, तो ये भगवान के स्वरूप हर किसी के लिए नहीं है, बहुत बहुत दिव्य भगवान के गुह्य अवतार है। और आगे कहते हैं यह एतत् प्रायतो नरा, एतत् का मतलब होता है ये सारे अवतार, प्रायतो यानी सावधानी से। अब ये सारे अवतार भगवान के गुप्त हैं, और अगर कोई इनको सावधानी से क्या करता है, सायं प्रातः ग्रहण भक्तया। अब जैसे औषधि लेते ना हम, और डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हें बहुत बहुत दुख है इस चीज का, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, एक गोली सुबह को और एक गोली शाम को लेनी है। तो उसी तरह से आज सुत गोस्वामी हमारे इस भाव रोग, ये भाव रोग कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें भौतिक शरीर में रहना पड़ रहा है और भौतिक कष्टों को सहना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी बीमारी। और कहते हैं सायं प्रातर ग्रहण भक्तया, सुबह को और शाम को इसको ग्रहण करना है, इसको पाठ करना है, और उसके साथ जैसे डॉक्टर भी बोलता है ना, इसके साथ आपको ये टेबलेट खानी है सुबह सवेरे, और इसके साथ ये एहतियात करनी है, है ना, वो बताता है। तो फिर इसी तरह से ये भी बोल रहे हैं, ग्रहण करना है, पाठ करना है, और तुम्हारे अंदर उस समय क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, भक्तया, भक्ति पूर्वक प्रेम से, ये मानते हुए कि कृष्ण ही समस्त अवतारों के स्रोत हैं, और कृष्ण के विषय में श्रवण। अभी मैं कभी, हम लोग क्या सोचते हैं, अभी हम श्रवण करेंगे उसके बाद बैठ के भक्ति करेंगे भगवान की, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, प्रातः सायं, सायं प्रातः ग्रहण भक्तया, बस आपको खाली श्रवण ही करना है। श्रवण सबसे बड़ी भक्ति है यहाँ पर, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म कोई हमारी तरह साधारण नहीं होते। संसार में जीव सदैव सुनता रहता है कुछ न कुछ, किसी न किसी जीव के विषय में, परंतु किसी के भी विषय में सुनने से हम दुखों से नहीं बच सकते। लेकिन क्योंकि भगवान के जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, इसीलिए दिव्य के विषय में जब हम सुनते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे भावबंधन छूट जाते हैं, विमुच्यते दुख ग्रामात, यानी कि जितने जितने दुख हैं सारे के सारे दुख विमोच्यते छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के दिव्य जन्मों के विषय में, भगवान के दिव्य कर्मों के विषय में श्रवण करते, मात्र उनका श्रवण करने से किसी को विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्त भक्ति से निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो इनको श्रवण करने के साथ साथ हमें भक्तया, किस तरह से श्रवण करना, भक्तया। भक्तया का क्या मतलब होता है? जो भक्ति के विधि विधानों का पालन करे। ऐसा नहीं है कि आप उनको श्रवण करते हो और कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते। भक्ति का क्या मतलब होता है कि जब हम चार नियम का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो ये भक्ति के साथ यानी विधि विधानों का पालन करते हुए यदि हम भगवान के जन और कर्म के रहस्यों को श्रवण करते हैं तो ही हम दुख ग्रामात विमोच्यते, समस्त दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति नहीं करते, देखो भक्तया शब्द लिखा हुआ है, सायं प्रातर घृणन भक्तया। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। उनको यह अधिकार ही नहीं है कि भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जाने। तो यदि हम संसार के दुखों से छूटकर विमुच्यते समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान की इस कथा को साय और प्रातः सुबह सवेरे और शाम को श्रवण करना होगा, परंतु भक्ति के नियमों का पालन करते हुए। तो हमें किन किन अवतारों के विषय में अभी हमने सुना, जिनको श्रवण करने से, अगर हम भक्ति से श्रवण करते हैं सुबह शाम तो फिर हमारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। तो अब तक हमने जितने अवतारों की कथा श्रवण की है उसके विषय में कह रहे हैं कि इनको आपको सुबह शाम सुनना है, तो फिर हम उसको एक दफा देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक।